आप चाहती हैं कि आपके घर से शैतान चला जाए? बस 5 पॉइंट नोट कर लीजिए क्विकली कि हम अपने घरों से शैतान को कैसे भगवाएं। नंबर एक, घरों को अल्लाह की नाफरमानी के कामों से ख़त्म कर दें, यानी नाफरमानी के कामों को ख़त्म कीजिए, शैतान भाग जाएगा। नंबर टू, घर में सूरत बकरा की तिलावत रखें। आप अपने बच्चों में बांट दें, खुद बांट लें। पहला रुब एक पढ़ेगा, दूसरा दूसरा, कसरत से पढ़ते जाएं और तिलावत कम से कम चला लें तो भी है। फिर तीसरी चीज़ है कि घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी। और एक दुआ है, घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह ही वलजना, वो पूरी दुआ याद करें, और घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तु अलल्लाह ही वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। जब बंदा ये दुआ पढ़ के निकलता है तो फरिश्ता बोलता है, हुदी तव वकी तव कुफी ता, तुझे हिदायत भी दे दी गई, तुझे बचा भी लिया गया और तुझे किफ़ायत भी की गई। तो ये दुआएं हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़, घरों में कुत्ता न रखा जाए। इब्ने माजा की रिवायत है 3651 के, जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ से फरिश्ते चले जाते हैं। और इसी तरह पांचवी चीज़, घर को लहव और लाइब से बचाया जाए। सूरत लुकमान आयत 2, वमिनन नासी मई यश्तरी लहवल हदीसी। तो लहवल हदीस हर वो चीज़ है जो अल्लाह की याद से बंदे को गाफिल कर देती है और हक़ से दूर रखती है। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी चीज़ों से बचा के रखे। और देखिए कि शैतान हमारा दुश्मन है ना, बहुत बड़ा दुश्मन है, तो इससे अपने आप को बचाना है इंशाल्लाह। अब आप देखिए पीछे कितने रह गए हैं। अब ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल रसुल और ईमान बिल कदर, तकदीर की बातें। अब इन सब चीज़ों को पढ़ना और समझना हमारे अपने हक़ में फ़ायदे की चीज़ है ना। ये जो टॉपिक है ना, ईमान बिल कुतुब का, किताबों पर ईमान लाना, इसमें से पहली किताबों के मामले में सिर्फ चंद बातें नोट कर लें। नंबर एक, अल्लाह ने किताबें मुख्तलिफ औकात में इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की। हर नबी और वक्त के रसूल के ऊपर कभी सहाइफ की सूरत में, कभी किताबों की सूरत में। चार मशहूर किताबें आपके वर्कबुक में जगह बनी हुई है, वहाँ नाम जल्दी से लिख लीजिए। कौन सी किताब किस नबी पे उतरी और कुरान में ये बात किधर है? तौरात मूसा पर उतरी थी, माईदा 44 और फुरकान 35। हवाला लिखा हुआ है, इसकी फिक्र ना आप करें। जबूर हज़रत दाऊद पे उतरी, बनी इसराइल 55। इंजील ईसा पर, सूरत हदीद 27। और कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सूरत अलनाम आयत 19। सवाल पैदा होता है, आसमानी किताबों का हमसे मुतालबा क्या है? ईमान तो हमने लाना है। ये टॉपिक इतना मतलब कॉमन है कि इस पे आपने मेरे से भी ज़्यादा दफ़ा सुना होगा, किताबों पे ईमान लाना। सवाल पैदा होता है कि ये किताबें हमसे क्या तकाजा करती हैं? अभी मैंने चंद दिन पहले एक दर्स कहाँ दिया है जिसमें बताया था कुरान आपसे क्या चाहता है, बॉस्टन के अभी जो लेक्चर्स थे, तो उसमें कुरान की टू सक्सेस मैंने वो तीनों मुतालबे बताए थे। नंबर एक, अल्लाह के बंदे बन के रहो। दूसरी बात है, दुनिया में अल्लाह का पैगाम आम करो। और तीसरी बात है कि इसको अपने जिस्म से शुरू करके पूरी दुनिया पे नाफिज कर दो। ये तीन बड़े तकाजे हैं, लेकिन अल्लाह की किताबें, हर दौर की जो किताब थी वो ये तकाजा करती हैं, पूरी किताब को माना जाए, पिक एंड चूज ना हो, अपनी मर्जी से कुछ को लेना और कुछ को छोड़ना ये ना हो। अब ये तो होगी सारी बातें किताबों की, सवाल पैदा होता है कुरान मजीद, जो हमारी प्यारी किताब है, ये क्या किताब है और इसके साथ हमारा क्या मामला होना चाहिए? तो पहली बात है कि कुरान फाइनल वर्जन है हिदायत का, लास्ट एंड लीस्ट, बस दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह की आखिरी किताब है, सूरत अनाम 92। ये रेफरेंसेस लिख लीजिए, आपको 7 पॉइंट्स लिखाऊंगी कुरान क्या है। नंबर एक, आखिरी किताब है। इसके बाद कोई कहता है किताब उतरी है तो वो जुल्म करता है अपने ऊपर भी, दूसरों पे। दूसरी बात, सूरत आराफ 158 और सबा 28 है, और वो कहे कि ये रहती दुनिया तक के लिए, किसी एक ख़ास और जगह वक्त के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट थिंग है कि तब्दीली और तगैयुर से पाक है, महफूज तरीन किताब है कह ले, फुस्सिलत 41-42। फिर इसी तरह से ये घड़ा हुआ नहीं है, यानी फैब्रिकेटेड नहीं है, और जो पिछली किताबों ने तब्दीलियां कर दी थी उसको कुरान ने चेंज कर दिया, यानी उसकी वेरिफिकेशन है, सूरह यूसुफ 1:1:1। और फिर इसके बाद सूरह माईदा 48 से क्या पता चलता है? कुरान मुहैमिन है, गाइड है। किस चीज़ पे? पिछली किताबों पे। जो चीज़ें कुरान के मुताबिक हैं आज की बाइबल में वो ठीक हैं, और जो गलत हैं गोया के वो चेंज हो गई। और छठी चीज़ क्या है? कुरान सीने में महफूज हो जाता है, सूरह हिजर 9 है। अल्लाह ने इस किताब को इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और आखिरी बात जिस पे अल्लाह करे कि हम मुसलमानों को यकीन आ जाए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार इस किताब के ऊपर अमल करने में है। सूरत माईदा 15:16 है। आज पुरानी किताबें क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि वो बदल चुकी थी। सिफात क्या है या फजीलत क्या है कुरान पाक की? कुरान पाक को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत बनाकर भेजा है, मुकाम इसका बहुत आला है, लेकिन कुरान पाक में ही कुछ फजीलतें हैं। 8 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। कुरान क्या है? नंबर एक, सबसे बड़ा फजल। सूरह यूनस 58 आती है किसी को याद? कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। हकीकत है कि कुरान इस कायनात पे अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुरान पाक जो है ना, क़यामत के दिन शिफात करेगा। ये हवाला आपके पास लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सही मुस्लिम 1847। नंबर दो, इसकी फजीलत, कुरान पाक का माहिर मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। मुस्लिम 798 और बुखारी 4937। फिर कुरान मजीद की तिलावत करने वाले के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से। बुखारी 5018। ये पूरा वाक्या बड़ा दिलचस्प एक सहाबी का। फिर साहिबे कुरान के ऊपर रश करना जायज़ है। बुखारी 7529 और मुस्लिम 815। कुरान मजीद के एक लफ्ज़ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं। तिरमिज़ी 2910। कुरान मजीद सीखने और सिखाने वाला दुनिया में सबसे बेहतर इंसान है। इसकी दलील बुखारी 5027 और इसी तरह से अबू दाऊद में भी है। फिर इसी तरह कुरान मजीद का हाफिज जन्नत में बुलंद दर्जे पर फायज होगा। अबू दाऊद 1464। और आठवीं बात, कौमों के उरूज और जवाल का जरिया कुरान है। मुस्लिम 817। आखिरी बात, कुरान से हमारा क्या ताल्लुक हो? हम इससे क्या लें, चूमे चाटें, इसके तावीज़ बनाएं? नहीं, हमारा ताल्लुक इस कुरान के साथ क्या होना चाहिए? इसको हिदायत का जरिया बनाएं और इस किताब को पूरे का पूरा लें, इसकी दावत दूसरों को भी दें, और दिलों में उतरने वाली नसीहत है ये, तो दूसरों को इसके ज़रिए से नेकी का हुक्म और बुराई से रुकने की दावत दें। ये शिफा है, इसके ज़रिए लोगों की बीमारियों को और परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें, और इस पर यकीन रखें कि सारी दुनिया के लोग मिल भी जाएं तो इस किताब से बेहतर किताब नहीं ला सकते। फिर एक हमारे इससे ताल्लुक ये होना चाहिए कि दिन या रात के किसी हिस्से में इसकी तिलावत ज़रूर करें, इसको अपनी ज़ुबान में समझें, मानी मफहूम पे गौर करें, कुछ हिस्सा इसका हिफ्ज करें, क्योंकि हदीस में आता है उस सीने को अल्लाह आग से बचा लेगा जिसमें कुरान होगा। फिर एक और हमारा इसके साथ ताल्लुक़ क्या होना चाहिए कि हलाल को हलाल और हराम को हराम समझें, इसके वईद की आयतों को सुनकर खौफजदा हो जाएं और रोएं, और खुशखबरी की आयतों पर अपने आप को जमाएं और उस पर खुशी का इजहार करें, और इसकी तालीम को आम करने में हर मुमकिन हिस्सा डाल दें। अल्लाह करे कि मैं और आप इसमें शामिल हो जाएं। लेकिन ये सारा कुछ कब होगा? जब हम खुद अपने अंदर वो सिफात लाएंगे जिसको पीछे पड़ चुके हैं, ईमान, इस्लाम और एहसान के दर्जे पे और तकवा पे होंगे। अल्लाह करे कि हमारा इस किताब पे पूरा का पूरा ईमान हो जाए। तो ये ईमान बिल कुतुब की एक हल्की सी वजाहत थी। ईमान बिल रसुल, तिल का रसुल उफद्दलना। रसूल कौन होते हैं? नंबर एक, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। अल्लाह इंसानों के आला तरीन मुकाम को रिसालत का मुकाम कहते हैं, ठीक है? रसूलों पर ईमान लाना चाहिए। इनकी ज़िंदगियों का मकसद लोगों को अल्लाह का पैगाम देना होता है। सबसे खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं और इनके ज़रिए से अल्लाह काम ले लेता है। कुल कितने रसूल हैं? कुरान पाक में 25 रसूलों के नाम हैं। सूरत निसा में देख लीजिए कि कौन सी आयत है जिसमें 18 नबियों का जिक्र है, और उलुल अज़म पैगंबर 5 हैं। हज़रत इब्राहिम, मूसा, ईसा, हज़रत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा, और सारे अम्बिया में सबसे बढ़कर मुकाम और मरतबा नबी सल्लम का है, जिसको हमने पीछे ईमान बिर रिसालत में भी पढ़ा था। आप आखिरी नबी थे, नबियों के सरदार थे, और अल्लाह ने आपके लिए ये सब कुछ रखा। नबी सल्लम की खसूसियात, खातिमुल अंबिया थे, सूरत अहज़ाब 40, आप आखिरी नबी थे। दूसरी बात, आप तमाम इंसानों के सरदार थे। तिर्मिज़ी 3148। और इसके बाद आप सब इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे। सूरत अल अराफ 158 अगले पेज की पहली लाइन है। तो गोया कि ईमान बे रिसालत जो है ये एक पूरा टॉपिक है। इसको चूंकि हम पढ़ चुके पीछे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में, इसलिए यहाँ इस पर इतना ही काफ़ी है। वापस ज़रा से अपने इस चार्ट पे आइए, अकीदे की इस कड़ी को देखिए कि हम कहाँ पहुँच गए, कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान बिल्ला भी पढ़वा दिया, ईमान बिल कुतुब भी हल्का सा टच किया, जितना मर्जी टच कर लें। मेरा हाल है कुरान के टॉपिक में हमारे सबसे ज़्यादा लेक्चर्स हैं वेबसाइट पे, फेवरेट टॉपिक की किताब है, तो वो सब चीज़ें आप इधर से किसी से भी सुन सकते हैं। फिर इस तरह ईमान बिल रसूल पढ़ लिया, अब क्या रह गया पीछे? आखरत और तकदीर, दो बेहतरीन टॉपिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकायद के मौजू में एक बुनियादी जुज़ क्या है? ईमान बिल आखिरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल मक्की दौर का एक तीसरा अहम टॉपिक ईमान बिल आखिरा था। और यहाँ ये भी नोट कीजिए कि मक्का वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इतराज़ात थे, उसमें एक बहुत बड़ा, अगर सबसे बड़ा ना भी कहूँ तो वो एतराज़ क्या था कि मैं युहिल इज़ाम वहिया रमीम, कौन ज़िंदा करेगा इन हड्डियों को जबकि ये गल सड़ चुकी। तो आखरत, मरने के बाद दोबारा जीना और मरने के बाद अपनी मौजूदा इस ज़िंदगी का हिसाब देना लेना, ये उस दौर के लोगों के लिए एक अचंभा बन चुका था। हालांकि वो हज़रत इब्राहिम की नस्ल से होने का दावा भी करते थे, हज़रत इस्माइल की तो बराह रास्त नस्ल में से थे, लेकिन जब कौमों में बेअमली शुरू होती है ना, तो उसका नुकसान क्या होता है? दो दफ़ा तो सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्तकु यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सन शैया। जो खराबियां आती हैं, आज अगर उम्मत मुस्लिमा की बेअमली को सामने रखे तो एक जुमला सबसे पहले ईमान बिल आखिरा के साथ ये लिख लीजिए कि जब अकीदा आखरत बिगड़ता है तो कौमें बेअमल हो जाती हैं। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल मिसाल दूंगी और ये सारी बातें आप ये इस पहले पैराग्राफ में लिखिए। और वो क्या है, किसी बच्चे को ये यकीन हो कि इम्तिहान वाले दिन जो पेपर आने वाला है, नंबर एक मेरा टीचर मुझे पहले से बता देगा, दूसरी बात है पर्चा देने के दौरान मेरी मदद कर देगा, जिसको बूटी लगवाना कह सकते हैं, नकल मरवाना, तीसरी बात है कि जिस शख्स ने मेरे पेपर को चेक करना है, थोड़ा सा उसको ले देकर नंबर लगवा लूँगा, क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। ये है ईमान बिल आखिरा के ख़राब होने की वजह, कि जब ये चीज़ें अकायद में आ जाती हैं, फलां आएगा तो बचा लेगा, फलां का पल्लू पकड़ लेंगे, मेरे बदले में वो चला जाएगा, नबी सिफारिश कर देंगे एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो तो वो आपकी सिफारिश कर देगा, और ख़ानदान में एक फलां शख्स शहीद हो चुका तो फिर मैं उसी के साथ चल पड़ूंगी, तो उसके बाद अकीदे आखिरत बिगड़ जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा आपका ख्याल है झूठ क्यों बोलती है? अगर उनको पता चले ना कि झूठ बोलने वाला मोमिन ही नहीं रहता और झूठ की बू से रहमत का फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है, तो कभी झूठ ना बोले। और यहाँ दुनिया में एक टिकट का मिलना 50-60 डॉलर या कुछ और इस तरह के जो हमें मिलती हैं ट्रैफिक के बेतरतीबियों पे जो चार्ज होता है, अगर ये यकीन ना हो तो हम में से आधे लोग भी सीट बेल्ट ना बांधे। ओवर स्पीडिंग से कौन बचता है? वही बचता है जिसको पता है कि ओवर स्पीड हो गई, कैमरे में आ गया तो घर में टिकट आ जाएगा। बिल्कुल ईमान बिल आखिरा को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आखिरत पर ईमान बंदे का किबला है। आप यहाँ आए, पढ़ा, फिर आपका टेस्ट लिया गया और आपकी जो भी मदद की जा सकी, लेकिन इसके बाद आपसे कुछ चीज़ों का मुतालबा हुआ। आपको यकीन है ये सब होगा तो आप भी सारे रूल्स को मानेंगे, और पता चले टेस्ट दे दो ना दे दो, आपके नंबर उसमें उसके इसमें और इसी तरह की चीज़ें। तो सारी बात का खुलासा, आखरत के दिन से क्या मुराद है, बड़ा बड़ा करके लिख लें और इसको पहले अपने अंदर जज्ब करें, फिर लिखें आखरत के दिन से मुराद इस ज़िंदगी का आखिरी और आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन। याद रखिए, हर रोज़ सुबह होती है और शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है ना। हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आने वाला है जो हमारी इस ज़िंदगी का आखिरी लेकिन दूसरी ज़िंदगी का पहला दिन होगा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ट्रेन की आखिरी बोगी से उतरकर पिछली ट्रेन की पहली बोगी में सवार होना है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। दुनिया में आने का दिन बहुत ख़तरनाक होता है, इसी तरह दुनिया से जाने का दिन भी बहुत मुश्किल दिन होगा। और उस दिन सारा कुछ जो ज़िंदगी में किया था, फ़मैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा और शर्रिन यरा, اس پر ایمان ہونا ہے، آخرت پر ایمان لانا. کوئی سیدھا رہ نہیں سکتا جب تک اس کا عقیدہ آخرت درست نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو مجھے آزادی دے کر بھیجا، ارادے کی، اختیار کی، اس کا صحیح استعمال کر لیں یا غلط کر لیں، یہ آپ کی میری مرضی ہے. لیکن سورۃ آل عمران 185 میں ہم پڑھ چکے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم یقیناً قیامت کے روز اپنے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا بس وہی ہے کامیاب. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی اس دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ مرنے سے لے کر قیامت کے دن کے سارے مراحل سے گزر کر یا جنت یا جہنم میں داخل کیے جانے کے ہر مرحلے پر ایمان لانا مراد ہے. اس سے کسی ایک سٹیپ کو چھوڑ نہیں سکتے، پل سرات سے گزرنے کا انکار نہیں کر سکتے، حوض کوثر کے پانی کا انکار نہیں کر سکتے، شفاعت اور اسی طرح سے قیامت کے دن کے کھڑے ہونے کی. ہم سب کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ سارے معاملے ہونے والے ہیں. انشاءاللہ اگلے سٹیپ پہ ہم دیکھیں گے کچھ مراحل بھی ہوں گے. ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوگا؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے ہر بندے کا انفرادی طور پہ، لیکن اجتماعی طور پہ قیامت کے ساتھ آخرت شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ میں جو کر چکے سو کر چکے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے یہ بات نبی کو بھی نہیں بتائی. قرآن پاک میں کئی سوالات ہیں قیامت کے آنے کے وقت کے بارے میں، لیکن فرمایا کہ آپ کو اس کا وقت نہیں بتایا گیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی تیاری تم نے کیا کی ہے. یہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ نے آپ کو مجھے نہیں بتایا. بخاری میں یہ بات موجود 50 نمبر حدیث میں. کیا قیامت کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ بالکل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی جو علامتیں بتائی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، علامات کبرا اور علامات صغرا. کبرا 10 ہیں، ان کو نوٹ کرواؤں گی آپ کو. ویسے تو ہم دن میں کئی دفعہ قیامت دیکھتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، پھر پیلی ہوتی ہیں، پھر مرجھا جاتی ہیں، پھول کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ قیامت آئے گی اور اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، یہ صحیح مسلم کی روایت 7403. دوسری علامت ہے شق قمر، جو اللہ کے نبی کے دور میں ہو چکا، سورۃ قمر کی پہلی آیت اس کی دلیل ہے. تیسری، دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا، یہ مسلم کی روایت ہے 7272. یہ اب نشانیاں وہ ہیں جو آئیں گی انشاءاللہ آگے. پھر چوتھی ہے درندوں کا انسانوں سے بات کرنا، ترمذی 2181. یعنی یہ ایک دابت الارض نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا. پھر قیامت سے پہلے بہت ساری جنگیں لگیں گی، ملاحمات کہتے ہیں ان کو، ملاحمہ بھی کہہ سکتے ہیں. مسلم کی روایت 7312 نمبر کی. آج دیکھ لیجیے، ایک جنگ ابھی پوری نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. پھر چھٹی علامت ہے امام مہدی کا ظہور، یہ آپ کو ناصر الدین البانی کی روایت سے بھی ملتا ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، 4285 نمبر. پھر اسی طرح سے دجال کا خروج، مسلم 7384. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آج بھی وہ زندہ ہے، آسمان سے دنیا میں آئیں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7278. اور یہاں نوٹ کریں، 100 کے قریب تواتر درجے کی احادیث ہے، کنٹینیوس ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا ثابت ہے. پھر بھی کوئی شک کرے تو اس کی مرضی. پھر نوی یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورۃ الانبیاء 96-97. پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، صحیح مسلم 7397. پھر زمین کا دھنسنا، یعنی جیسے زمین اندر چلی جائے گی، سنک کرنا کہتے ہیں نا، سنک، ارتھ از سنکنگ. مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں تین مختلف جگہوں پہ زمین ایسے دھسے گی کہ پوری پوری بستیاں اندر چلی جائیں گی، یہ صحیح مسلم 7285 نمبر کی حدیث ہے. اور دیکھ لیجئے اس کی علامتیں تو دکھ رہی ہیں. پھر 12ویں علامت کیا ہے؟ دھواں، پوری دنیا میں ایک سموک ہوگا، صحیح مسلم 7397. नेक्स्ट दाबतुल अर्ज़ का नाम भी आता है, सही मुस्लिम 7383। पहले जो मैंने कही थी वो मुख्तलिफ जानवरों का बात करना है, अब ये किस फॉर्म में होगा अल्लाहु आलम, लेकिन ये बात हमें अहदीस से मिलती है। नेक्स्ट क्या, एक पाकीज़ा हवा चलेगी, मुसनद अहमद की ये रिवायत है, जिससे पता चलता है कि एक हवा चलेगी और नेक लोग मरते जाएंगे और आखिर में बदतरीन लोग जब रह जाएंगे तो उन पर क़यामत आएगी। फिर एक अलामत है कि मक्का को वीरान कर दिया जाएगा, खाना काबा को गिराया जाएगा, सही मुस्लिम 7305 नंबर। फिर मदीना भी वीरान हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है बुखारी 1874। और आखिरी बात, हिजाज से एक आग निकलेगी और शाम की तरफ लोगों को हांकेगी, सीरिया की तरफ, 7118 नंबर है। क़यामत का आगाज़ कैसे होगा अगर आप अपने हिसाब से देख लें, सूर फूकेगा, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बढ़ती जाएगी, चीज़ें लरसने लगेंगी और इंसान सारे मरते जाएंगे, आसमान फटेगा, सितारे झड़ेंगे, हर चीज़ का कह लीजिए कि एक्सल टूट जाएगा, और पानी ज़मीन पे है और कब्रें खुदी हुई हैं। ये पूरा 30वां पारा है, अभी आपने पढ़ा ये, तो लिहाजा क़यामत के मनाजिर की 30वें पारे की सूरतों की रोशनी में देखिए। लेकिन ये याद रखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो मरता है ना उसकी क़यामत तो फ़ौरन आ ही जाती है। आपका मेरा मौत पर यकीन होना चाहिए, अपनी मौत के अलावा हमें सबका यकीन होता है। तो सवाल पैदा होता है कि मौत के बाद रूह जब निकलती है तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि मैं आप किसी वक़्त भी दुनिया से जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी हकीकत और इतनी बड़ी बेबसी है कि जिसके आगे कोई बंदा बोल नहीं सका। आज भी दुनिया के हर मसले में इख्तलाफ होगा, मौत के मौजू पे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ये नहीं सोच सकता कि नहीं, क्योंकि इसकी दलील दिन में हर दिन हजारों लोग मरते हैं। किसी मजहब का बंदा ये नहीं कह सकता कि मौत नहीं है, मौत का इनकार कोई नहीं करता। ये अलग बात है कि मरने के बाद क्या होगा, इसका इनकार किया जाता है। तो मौत क्या है? वापसी का सफर, फना नहीं है मौत। बहुत सारे लोगों ने मौत को फना समझ लिया, फना होती तो क्या अच्छा था। वो कहते हैं ना, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। जब एक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मलकुल मौत अपने फरिश्तों के साथ उसके पास मौजूद होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अहादीस है, मैं आपको सिर्फ चंद जुमलों में ही बता सकती हूँ। वैसे इस पे एक लेक्चर मौजूद है, जर्नी ऑफ द सोल, रूह का सफ़र, तो उसमें पूरी तरतीब से वो हदीस बयान की है कि जिसमें अल्लाह के नबी एक मौके पे, और हदीस का अगर नंबर लिखना चाहें तो बरा बिन आज़ब से ये रिवायत है, अल्लाह के नबी एक मौके पे किसी कब्र के पास सब बैठे थे, कब्र खोदने का इंतज़ार था, तो बेसिकली अभी थोड़ी सी देर थी, तो आपने उस वक्त को ज़ाया नहीं किया और साथियों को जो डिटेल्स बताई वो मैं अपने लफ्ज़ों में आपको बता सकती हूँ कि जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके सामने फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं। नेक इंसान है तो बड़े खूबसूरत चमकते चेहरों वाले फरिश्ते और सूरज की रोशनी, जिनके पास जन्नत का कफन होता है, जन्नत की खुशबुएं होती हैं, फिर उसकी रूह को उसमें लपेटा जाता है। पहले उससे बल्कि मलकुल मौत पास बैठकर बड़े प्यार से उसकी जान निकालता है, कह नफ्से मुतमईना चल, या ये तो हन नफ्सुल मुतमईना के लफ्ज़ सूरह फजर के एंड पे भी हैं। क्या पता चला, आपने फरमाया कि रूह इतने आराम से निकल जाती है जैसे पानी की मश्क है ना, उसका ढक्कन ढीला हो जाए, कतरा कतरा निकल जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। फिर मलकुल मौत उसको लेते हैं, फिर फरिश्ते पलक झपक भी उसको मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उसको लेकर जन्नत से आए हुए कफन में लपेटते हैं, खुशबू मलते हैं उसको, कहते हैं उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती है कि जैसे खुशगवार हवा का झोंका है। फिर उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं, आओ इसको ऊपर की सैर कराते हैं, फिर वो उसको ऊपर लेकर जाते हैं, जो फरिश्ते भी रास्ते में मिलते हैं सारे उसके पास चले जाते हैं और उसकी खुशबू सूंघकर फरिश्ते पूछते हैं, ये पाकीज़ा रुख किसकी है? ज़रा सा रुक कर सोचिए, अगर दुनिया में कोई पाकीज़गी होगी हमारी ज़ात से तभी तो ये खुशखबरियाँ होंगी ना। या हमारे तो उस वक्त रो धो रहे हैं और कफन का नहलाने धुलाने का इंतजाम कर रहे हैं, उस रूह को कोई फिक्र नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, उसका एक ऊपर का सफ़र है, हत्ता के फिर पहले आसमान तक पहुंच जाती है वो रूह, फिर दरवाज़ा नॉक किया जाता है, फिर वो पूछा जाता है ये कौन है, फिर आवाज़ आती है। और अगर आपको सूरत अल अराफ़ की वायत याद हो, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, कि ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समाए वाति वल अर्ज़, के जो लोग तकजीब करते हैं, झुटलाते हैं, उनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते या आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते, तो उसकी तफसील में भी यह हदीस अक्सर कोट की जाती है। बहरहाल उसका नाम बताया जाता है, वो बड़े प्यार से ऊपर खुलता जाता है, फरिश्ते मिलते हैं, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान के फरिश्ते उसके साथ लग जाते हैं, होते होते सातवें आसमान तक वह रूह पहुँचाई जाती है, और फिर वहाँ तो आपको पता है कि अल्लाह ताला का अर्श है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इस बंदे का नामे अमाल इल्लीयीन में रख दो और इसको वापस ज़मीन पे छोड़ कर आओ। अभी इसका हिसाब बाकी है, अभी कब्र का वक्त बाकी है। ये जो आलम बरज़ख़ है ना, ये कब्र में ही गुजारता है बंदा, सिवाय शहीद के। शहीद कब्र में नहीं होता, उसकी रूह भी ऊपर ही जाती है। तो बहरहाल वापस जिस्म उसके रूह में डाली जाती है। इतनी देर में जो घर वाले हैं वो इंसान को कफनाने दफनाने के बाद, यानी कफन भी दिया जा चुका, उसको गुसल भी कर दिया, नमाज भी पढ़ा दी, कब्र में डाल दिया। अब आगे अगर कब्र के हालात को भी आप देखें तो वो भी इसी में ही आते हैं। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहा गया। फिर वो उसे तीन सवाल करते हैं, मन रब्बू का, मर रसूलू का, मा दीनू का। तेरा अल्लाह कौन, तेरा रसूल कौन और तेरा दीन क्या है? अच्छा बंदा था, सबके जवाब देता है। इतने में फिर आवाज़ आती है कि इस बंदे को जन्नत का बिस्तर दे दो, यानी उसके लिए कह लीजिए कि फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसकी कब्र जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा बन जाती है। ये जन्नत इस तरह उसकी कब्र के अंदर कह लीजिए कि एक एक्सटेंशन ऑफ जन्नत है। और फिर वहां उसको कहा जाता है कि नम का नौ मतिल अरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, क्योंकि सारी जिंदगी तो काम करके आया ना। अक्सर लोग कहते हैं ना काम, सोना, आराम, तो कब्र में इतना सोएंगे के दिल भर जाएगा। अगर इस दुनिया में हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर गए तो इंशाल्लाह हमारी कब्र बड़ी खूबसूरत होगी। फिर आवाज़ आती है, इसके कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसको जन्नत के कपड़े पहना दो, खुशबुएं हवाएं आने लगती हैं। और उसकी कब्र में एक बड़ा खूबसूरत इंसान आ जाता है। ये उसको पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं तो दुनिया में भी तुम्हारे साथ था। वो कौन? मैं तुम्हारे नेक अमल हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी चीज़ें हूँ। दुनिया में भी तुम्हारे कंधे पे, यानी राइट साइड पे जो नेकियाँ होती हैं ना, वो कह लीजिए कि एक मुजस्सम बनाई जाती है और उस बंदे की कब्र की वहशत को दूर किया जाता है। ज़रा सोचिए आप, कई लोगों को तन्हाई से डर लगता है ना, और कई ऐसे भी लोग हैं कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कब्र में भी तन्हाई नहीं होगी। आन इस वख्शति फ़ी कब्री, दुआ भी एक कि अल्लाह मेरी कब्र की वहशत को मानूस कर दे। अल्लाह आन इस वख्शति फ़ी कब्री। तो बहरहाल फिर वो उसके साथ रहने लगता है और वो इंतज़ार करता है क़यामत का। उसको कहा जाता है वो जो जन्नत, बल्कि ऊपर आसमानों पे, जो मैंने उसको स्किप कर दिया, ज़्यादा नहीं बताया आपको, पूरी डिस्क्रिप्शन है उसको जन्नत का, एक टूर दिया जाता है। पहले से मौजूद लोग जो नेक थे फौत हुए, उनकी रूहों से मुलाकात होती है। और उसको कहा जाता है कि अब तुम इंतज़ार करो। और उसका दिल क्या करता है कि फौरन क़यामत आए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है तो बड़ा तकलीफ़ दे, लेकिन सुनना और मानना तो पड़ता है ना। तो वो बहुत सख्त वक्त होता है, और जो कुछ इधर हुआ है ना, वो उसका अपोजिट है। उसके लिए तो पहले ही आसमान से दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी रूह को जिस्म में पटख दिया जाता है। कब्र में जहन्नुम का टाट आता है, बदबूदार, उसकी रूह में से बू आती है। फरिश्ते उसको जब बाहर निकाल रहे होते हैं तो गुस्से से निकाल रहे होते हैं, यही है वन नाजियाती गरका, वन नाशिताती नश्ता। और उसकी तकलीफ कितनी होती है, आपने फरमाया गीली ऊन को जब सीख में डालकर निकालो तो चीथड़े निकल जाते हैं ना, इस तरह उसकी रूह बड़ी मुश्किल से निकलती है। और जिधर से गुजरती है लोग उसके ऊपर लानतान करते हैं, हत्ता के फिर सिज्जीन जो जमीन के घड़ों में है, वहाँ उसके नामे अमाल के पास, यानी उसके उसके सारे बुरे अमलों को भेजा जाता है। इसके भी पास कब्र में दो फरिश्ते आते हैं और वो भी सवाल यही करते हैं, लेकिन इसको इन तीन सवालों का जवाब भी नहीं आता। और आप कहते हैं इस कोर्स में अभी तक हम इन्हीं सवालों के जवाब में, मन रब्बू का, मर रसूलू का, माँ दीनू का, यही है माँ दीनू का, इस्लाम क्या है, इस्लाम ए टू जी है, आज हमने पढ़ा ही नहीं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या मामला होगा, अल्लाह जानता है, अल्लाह के बंदे जानते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये खुशकिस्मती है कि हमें दुनिया में पता चल रहा है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, और फिर उसके बाद कब्र अल्लाह की बना, या कह लीजिए कि जहन्नुम की एक घड़ी है या जन्नत का एक बाग है। आलमे बरज़ख़ है ये सारा, आड़ को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं, और जहाँ लोग वक्त की कैद से आज़ाद हो जाएंगे और कब्र के हालात को पढ़कर सहाबा रोते थे। हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी कब्र का सुन के। कहते थे ये आखरत की घाटियों में से पहली घाटी है, अगर ये ख़राब हो गई तो क्या बनेगा। ज़रूरत इस बात की, तो चंद पॉइंट्स नोट कर लीजिए कब्र में जाके क्या होने वाला है कुरान की आयतों की रोशनी में। पहली बात है, अल्लाह ने हर बंदे को कब्र देनी है। सूरत अब्बसा आयत 21, सुम्मा अमातहु फकबरा। फ़र्क इतना है, कोई जला दिया गया, जहाज़ के एक्सीडेंट में मारा गया, पानी में डूब गया, वही उसकी कब्र है। ज़मीन की मट्टी ना भी मिली तो भी बाकी चीज़ें तो होंगी। फिर दूसरी बात ये कि इस पर यकीन रखिए कि कब्र में सवाल जवाब होंगे, तिर्मिजी की रिवायत 1071। और अभी भी मैंने आपको जो हदीस सुनाई है उससे भी आपने देख लिया कि किस तरीके से ये होगा। फिर इसी तरह से ये भी जहन में रखिए कि मरने के बाद जब इंसान कब्र में जाएगा तो उसको ऐसे लगेगा कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी थी, बहुत छोटी थी। कब्र में हर रोज़ उसका ठिकाना दिखाया जाता है, जन्नत का होगा या जहन्नुम का। बुखारी की रिवायत 1379, ये खुद लिख लीजिए रेफरेंस इसका, क़यामत के दिन वहाँ इंसान के साथ कब्र में होता है। और कब्र के अजाब से अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे। सही मुस्लिम में एक दुआ है 1325 की, आप उसको भी याद कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले।